देखिए, जब हम रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ दी व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट. अब अगर मैं आपको कहूँ रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग, इफ़ आई एम टीचिंग यू दिस मटीरियल, यू लर्न दिस मटीरियल, बट यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज दिस मटीरियल, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट? मेमोरी इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट मेमोरी इज़. सुबह उठना है, क्या करना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, आज मीटिंग है या नहीं है, आज स्कूल में असेंबली जल्दी है या नहीं है, या मुझे किससे मिलना है, ये सब चीज़ें हमारा आप देखिए कि हमारे माइंड में कितनी सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती हैं और हम उनको हमेशा रिमेम्बर करके चलते हैं. मतलब दी माइंड हैज़ अ लार्ज अनलिमिटेड कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग दी इन्फॉर्मेशन. हाँ, ऐसा ज़रूर है कि सब चीज़ें हमें हमेशा याद नहीं रह जाती और रहनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने माइंड को क्लीन नहीं करोगे तो सब कुछ तो वेब ऑफ थिंग्स बन जाएगा, फिर तो आप उलझते चले जाएंगे. तो विद टाइम कुछ चीज़ें कुछ बातें जो हैं वो सबसाइड करती हैं, बट ऐसा नहीं है कि कभी आपको उनकी याद दिलाई जाए तो आपको याद नहीं आता. मेमोरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेमोरी एक तरह से मेमोरी क्या है, हम कुछ लर्न करते हैं, उसे रिटेन करते हैं. रिटेन करना मतलब हमने मेमोराइज किया, उसको समझा, और फिर उन एक्सपीरियंसेस को हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं. जैसे कि आज मान लीजिए मेरा किसी के साथ एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, तो मैं हमेशा उस चीज़ को याद रखूँगी, या आज मैंने अपना प्रेजेंटेशन अच्छा दिया तो मैं हमेशा याद रखूँगी कि आज के प्रेजेंटेशन के लिए मैंने किस तरह से पढ़ाई करी थी या मैंने किस तरह से तैयारी करी थी. तो मैं इस एक्सपीरियंस को मेरे लाइफ में आगे ऐसे यूज़ करूँगी कि जब भी मैं अच्छे से किसी चीज़ का प्रिपरेशन करके जाऊँगी तो मेरा जो प्रेजेंटेशन है या परफॉर्मेंस अच्छा होगा. तो व्हाट इज़ इट, एक छोटी सी बात है, लेकिन इट इज़ एक्चुअली योर मेमोरी कि आपने कैसे याद रखा और आप कैसे चले. तो मेमोरी तो आप पहले दिन, मुझे आज भी याद है कि मैं फर्स्ट डे स्कूल कब गई थी, आपको भी याद होगा आप फर्स्ट डे स्कूल कब. वो कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट फिनोमेनाज होते हैं जो कभी नहीं भूलते. मेरा स्कूल फ्रेंड कौन है, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड कौन है, आज हम किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, लेकिन अभी अगर मैं आपको ये बात बोल भी रही हूँ तो भी आपके दिमाग में वो सब चीज़ें एकदम से फ्लैश होने जो है वो लग जाती हैं. तो इसी से आप समझ सकते हैं कि मेमोरी जो है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है. हम एक जगह पर सीखी हुई चीज़ को जब दूसरी जगह पर अप्लाई करते हैं तो दैट मीन्स we are actually implying the learning and we can only imply when we remember it. If we do not remember it, then it is not possible to imply or to actually execute what we have learned. तो इसीलिए हम कहते हैं कि मेमोरी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और हमारे माइंड का अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है टू रिमेम्बर सर्टेन इन्फॉर्मेशन. हाँ, क्योंकि अगर आपके पास बहुत चीज़ें इकट्ठे आप याद रखोगे तो उससे क्या होता है, हमने बहुत सारी केस स्टडीज़ ऐसी आती हैं जिसमें लोगों को आज से उनके 30 साल पहले क्या क्या इवेंट्स हुए थे उनको एक 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 अगर आप कभी सर्च करेंगे केस स्टडीज़ कि दोज पीपल हु कुड नेवर फॉरगेट their life experiences, तो उनको आप सोचिए कि आपको हर चीज़ अगर रोज़ उसी टाइम पे एग्जैक्टली डेट और टाइम के साथ याद रहेगी तो आपको कैसा फील होगा. तो इसीलिए कुछ चीज़ें ये दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, अगर ये होता है तो अच्छा होता है. एक तो ये चीज़ होती है कि हमें चीज़ें याद भी रखनी चाहिए, साथ साथ कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें जो डेली हैपनिंग्स हैं जो कल को काम नहीं आने वाली, वो ऐसे ऐसे अगर डिलीट भी होती जाएँ तो वो वही चीज़ है कि वो जंक को डिलीट करता है माइंड. लेकिन जब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि वाई मेमोरी इज़ इम्पॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एज we were discussing earlier also, that our learning will not be successful if we are not able to remember anything. अब मैंने कुछ याद किया और अगर याद कर लिया, मैंने समझ लिया, लेकिन अगर उस एस्पेक्ट को मैं रिटेन ही नहीं कर पा रही हूँ तो व्हाट विल आई बी एबल, हाउ विल आई बी एबल टू प्रोड्यूस दिस. प्रोड्यूस तो मैं तभी करूँगी ना जब मैं मेमोराइज करूँगी. तो उसको प्रोड्यूस कैसे करूँगी एग्जामिनेशन में, अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाऊँगी तो लर्निंग विल हैव नो यूज़. ठीक है, अगर हम मेमोरी की बात करते हैं तो बहुत सारे चीज़ों के साथ उनको, एक तो मेमोरी है क्या, मेमोरी हमारा परसेप्शन है, हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं, उसको इंटरनली कैसे लेते हैं. अगर मेमोरी के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूं तो आई वुड से दैट मोर और लेस इट इज़ लाइक अ टेप रिकॉर्डर. टेप रिकॉर्डर में अब मैंने आई विल ऑन द टेप रिकॉर्डर एंड आई विल टेल यू दैट प्लीज़ टेल मी हु वॉज योर फ्रेंड इन क्लास 10, और प्लीज़ टेल मी हाउ गुड यू स्कोर्ड इन क्लास 8. ठीक है, ऐसा करके तो वो टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाएगा और आपको एकदम से सब चीज़ें याद हो जाती हैं. एक तरह से हर चीज़ जैसा टेप रिकॉर्डर स्टोर्स एवरीथिंग इन द माइंड, इन द सेम मैनर आर ब्रेन ऑल्सो स्टोर्स. बट उसको हम एग्जैक्टली टेप रिकॉर्डर से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज इन द टेप रिकॉर्डर वी ओनली हैव दी इट कैन ओनली प्रोड्यूस द ऑडिबल थिंग्स. लेकिन अगर मैं ब्रेन की बात करूँ, मेमोरी की बात करूँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम मेमोराइज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स की. उसमें ऑडियो भी होता है, विजुअल भी होता है. जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मैं अभी आपसे पूछूँ कि हाउ वॉज़ योर फर्स्ट डे इन स्कूल, तो आई जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन एंड इन फ्रंट ऑफ योर आईज वो सीन आपके सामने आ गया, मेरे सामने भी आ गया. तो इस तरह से मेमोरी घूमती है. अब इट इज़ नॉट ओनली ऑडियो और विजुअल कि मैंने वहाँ पे क्या सुना था, मेरे टीचर ने एक बार मुझे क्लास 10 में क्या कहा था या 12 में क्या कहा था या 8 क्लास में क्या कहा था. इट इज़ नॉट व्हाट आई सॉ और इट इज़ नॉट व्हाट आई हर्ड. आई कैन रिमेंबर ओनली दोज थिंग्स, बट आई स्टिल रिमेंबर दैट हाउ माई ग्रैंड मा यूज टू प्रिपेयर दोज लड्डूज फॉर मी एंड वॉट वॉज इट्स टेस्ट. तो वो टेस्ट का भी एक मेमरी होता है हमारा सेंस. ठीक है, तो हम हमेशा कहते हैं ना कि आज मैंने ये खाया तो मुझे इससे वो चीज़ याद आ गई. अब अगेन द साइंटिफिक थिंग इज, द लॉजिक इज दैट योर ब्रेन इज एबल टू मेमोराइज और रिमेंबर द टेस्ट ऑल्सो. ठीक है, कई बार हमें कोई टच करता है तो हम बोलते हैं कि किसी ने ऐसे टच किया जैसे लगा मम्मा ने, मेरी मदर ने मुझे ऐसे टच किया. तो वी आर एबल टू रिमेंबर द टच एज वेल. हमको वो भी याद रहता है, हमको टेस्ट भी याद रहता है, टच भी याद रहता है, विजुअल चीज़ें भी याद रहती हैं, सेंसरी चीज़ें भी याद रहती हैं. कई बार हम किसी प्लेसेस में जाते हैं तो हम कहते हैं यार यहाँ का जो इधर का ऑरा है या फिर जो यहाँ पे एक फ्रेग्रेंस आ रही है वो बहुत जानी पहचानी लग रही है. वो ऐसे ऐसी मैं उस जगह पे गई थी तो द ब्रेन इज एबल टू रिमेंबर दी सेंस ऑफ स्मेल ऑल्सो. तो आप ये सोच लीजिए कि हाउ इम्पॉर्टेंट मेमोरी इज. ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को वो करेंगे सूंघेंगे तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा अगर इसकी ऐसी स्मेल आ रही है दैट मीन्स ये चीज़ खराब हो चुकी है. क्योंकि हमें पता है कि जब चीज़ खराब होती है तो ऐसी होती है. तो वी आर एबल टू रिमेंबर दैट. तो दिस इज हाउ यू कैन मेक आउट कि हाउ इम्पॉर्टेंट मेमोरी इज इन आर लाइफ. अगर हम लोग कुछ चीज़ रिमेंबर नहीं कर पाते हैं तो वी लूज आर आइडेंटिटी. कई बार आपने देखा है कि लोगों को एमनीजियाज हो जाते हैं तो दे फॉरगेट कि उनका नाम क्या है, वो अपना आइडेंटिटी ही भूल जाएंगे. तो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेमोरी, दिस इज़ व्हाट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेमोरी इज़. वो डिपेंड करता है, वर्ड्स याद रहते हैं, वर्ड्स तो याद रहते हैं, कुछ मेमोरीज होती हैं, रेट्रोग्रेड एमनीशिया हो गया या किस तरह से उनको एमनीशिया किस टाइम पे हुआ है याद रहता है उन्हें. पर वो जो प्रोसेस करते हैं वो इन्फॉर्मेशन, कई बार उनको अपने आने वाले समय में चीज़ें जो होने वाली होती हैं वो याद नहीं कर पाते. जैसे कि हम लोग वो अभी हमने बात करी थी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की, कि जो प्रोसेस वो इन्फॉर्मेशन कर रहा है उसको वो चीज़ याद नहीं रहती है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है. बिकॉज उसमें हमारा ब्रेन का सिस्टम होता है वो एक जगह जो होता है उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ, और उस प्रॉब्लम की वजह से द प्रोसेसिंग डज नॉट गो वेल. तो उस वजह से क्या होता है कि इंडिविजुअल को याद नहीं रहती हैं चीज़ें. एक होता है कि आप आगे वाली चीज़ें तो सब रिमेंबर कर पा रहे हो लेकिन आपके साथ पीछे क्या हुआ वो आप रिमेंबर नहीं कर पाते हो. तो ये सब चीज़ें जो है वो जो होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स रहती हैं. और जहाँ तक वर्ड्स याद रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये सब चीज़ों का हमारी मेमोरी का, हमारे लिंग्विस्टिक्स का, इन सब का ब्रेन में अलग अलग एरिया है. तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट एरिया इन द ब्रेन इज हर्ट, तो उस पर डिपेंड करता है. एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर एबल टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स और प्रोड्यूस सर्टेन थिंग्स एंड नॉट एबल टू प्रोड्यूस द अदर. कि अपने अलग अलग एरियाज हैं, ब्रोकास एरिया कहते हैं हम, ये सब चीजें अलग अलग होती हैं ब्रेन और रिप्रोड्यूसिंग द थिंग्स इफेक्ट होता है. देखिए अगर हम लोग मेमोरी की बात करें कि व्हाट इज मेमोरी, तो बेसिकली ये जानना जरूरी है कि हाउ मेमोरी हैपेंस. सो इनिशियली आई वॉज ऑल्सो टेलिंग यू दैट मेमोरी इज़ वॉट यू आर परसीविंग फ्रॉम द एनवायरमेंट. ठीक है, लेकिन ये चीज़ भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. देर इज़ सो मच सो विच इज़ हैपनिंग अराउंड मी एंड यू राइट नाउ ऑल्सो, लेकिन हम हर चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. हम लोगों की वो हमारे अटेंशन सिर्फ उसी चीज़ पर जा रही है जो हमारे इंटरेस्ट की है. ठीक है, तो उसी तरह से देर आर सो मेनी सेंसरी इनपुट्स इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, तो व्हाट वी टेक फ्रॉम द एनवायरनमेंट, हाउ डू वी प्रोसेस इट, एंड आफ्टर प्रोसेसिंग हाउ डू वी स्टोर इट, एंड हाउ डू वी रिट्रीव इट आफ्टर स्टोरिंग इट. तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर रहता है. तो अगर हम इसको मेमोरी को कभी भी डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेमोरी, हाउ डज इट अकर, तो हम लोग कहते हैं कि देर इज़ अ सेंसरी इनपुट दैट यू टेक फ्रॉम द एनवायरनमेंट, देन दैट सेंसरी इनपुट गोज़ टू द सेंसरी रजिस्टर. वो सेंसरी रजिस्टर आपके आइज में भी हो सकता है, ईयर्स में भी हो सकता है, मतलब यू हियर समथिंग देन इट गोज़ टू दैट रजिस्टर ओनली, ऑडिटरी रजिस्टर. यू सी समथिंग एंड देन इट गोज़ टू द विजुअल register, you sense something, you taste something, it goes to that register. तो मतलब ये है कि you take some input from the environment, then it gets into the sensory register, whatever is important at that time. Simultaneously तीन चार भी हो सकते हैं कि आप taste भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, सूंघ भी रहे हैं, ये सब चीज़ें simultaneously happen होती हैं. तो सेंसरी इनपुट आता है, वो सेंसरी रजिस्टर में जाता है, देन ऑन द इन द सेंसरी रजिस्टर आप सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन लेते हो, क्योंकि सब कुछ आ रहा है. अभी मी एंड यू आर एबल टू यू नो सी सो मेनी थिंग्स इन द एनवायरनमेंट. यहाँ पे चेयर है, बॉटल्स हैं, टेबल है, देर आर सो मेनी थिंग्स, लाइट्स हैं, लेकिन वी आर नॉट प्रोसेसिंग ईच एंड एवरी थिंग. ठीक है, तो हमारा सेंसरी इनपुट जो है वो तो सब कुछ आ रहा है और हमारे सेंसरी रजिस्टर में जा रहा है, क्योंकि माई आईज कैन सी the whole room. I can hear the minute sounds also. Lekin what is important is which is my point of interest right now. तो हम लोग सेंसरी इनपुट लेते हैं, दैट गोज़ टू द सेंसरी रजिस्टर, देन वी सिलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड. फॉर एग्जाम्पल एट दिस मोमेंट द इन्फॉर्मेशन इज द ऑडियो विच इज़ बींग प्रोसेस्ड. तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो दैट इज़ गोइंग, दैट इज़ अट्रैक्टिंग माई अटेंशन. फिर वो सेंसरी रजिस्टर से जाता है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में. शॉर्ट टर्म मेमोरी इज अ सिस्टम, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है. शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक टाइम लिमिट होता है, जिसको हम आगे भी अभी एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ द टाइम लिमिट, टाइम ड्यूरेशन इन विच द इन्फॉर्मेशन स्टेज इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी. फिर इन्फॉर्मेशन जो है, जो सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, वो सेंसरी रजिस्टर से जाएगा शॉर्ट टर्म मेमोरी में. शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम कुछ टाइम तक उस इन्फॉर्मेशन को रखते हैं. इफ़ वी प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन फर्दर, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है. अगर वो उस इन्फॉर्मेशन को हम फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही वो डिलीट हो जाता है. तो दिस इज़ अ की एस्पेक्ट, दैट दिस इज़ हाउ मेमोरी टेक्स प्लेस. और जहाँ तक सेंसरी मेमोरी की बात मैंने आपको कही, तो सेंसरी मेमोरी क्या है कि वही चीज़ कि देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू. तो यू कैन होल्ड अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, कोई भी पिक्चर देखो और उसके सामने देखते जाओ. तो अब आप देखते हो कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, पिक्चर के एक एक एस्पेक्ट को देखते हैं. इधर जंगल है, इधर ट्रीज हैं, इधर हाउस है, इधर हाउस में इतनी विंडोज हैं, इतना ये लेक है और ये रास्ता बना है, ये गेट है, फ्लावर्स हैं, सब कुछ. तो एक एक एस्पेक्ट पे हम लोग जो हैं वो ध्यान देते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कितने टाइम तक हमारे माइंड में स्टे करती है वो डिपेंड करता है कि मैंने उस पूरी पिक्चर में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान दिया. ठीक है, और मैंने कितना इलैबोरेट रिहर्सल किया उस चीज़ को रिमेंबर करने में. कई बार हम बहुत ज़्यादा इलैबोरेटिव रिहर्सल करते हैं कि हम हर एक एस्पेक्ट जो है चीज़ों का ध्यान में रखते हैं, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है. कई बार बस हमने देखा और हम आ गए. जैसे आप लोग सुबह ट्रैफिक जैम से जब हम लोग गुजरते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे अराउंड हैपन कर रही होती हैं. जैसे हम लोग देखते हैं हमारे साथ वाली गाड़ी में जो जा रहा है वो खाना खा रहा है, या हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ में जो कोई बच्चा जा रहा है वो पेपर्स फेंक रहा है या कोई कुछ बेच रहा है. तो कई बार क्या होता है कि कई बार वो चीज़ हमें पूरे दिन के लिए याद रह जाती है, क्योंकि शायद उसने हमारा अटेंशन उस तरह से कुछ ऐसा डिफरेंट होता है जो हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट करता है. कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ हमने देखा और उसके बाद उस मोमेंट में याद रहा और अगले ही टर्न पे जाके हम लोग वो चीज़ भूल गए कि ऐसा कुछ हो रहा था. तो सेंसरी रजिस्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए रहती है. इसे हम कहते हैं एक तो प्लस माइनस 7 आइटम्स जो हैं वो स्टोर कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लस माइनस 7 आइटम्स, 5 to 9 आइटम्स जो हैं प्लस माइनस 7, मतलब 5 to 7 आइटम्स प्लस माइनस 2, ठीक है, 9 आइटम्स, 9, 7, 5 इतनी आइटम्स हमारे सेंसरी रजिस्टर में एक टाइम पे रह सकती हैं. इसका मतलब हुआ ऑडियो, विजुअल, सेंसरी, कितनी चीज़ें हमारे अराउंड हैं. मैं कितनी बॉटल्स देख पा रही हूँ, मैं कितना माइक्स देख पा रही हूँ, मैं कितना वॉल्स पे ध्यान दे पा रही हूँ, किस वॉच पे ध्यान दे पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी आइटम्स हैं. बट इतनी सारी आइटम्स में से हम 9, 5 या 7 आइटम्स को ही स्टोर करके रख सकते हैं अपने दिमाग में, और ये 30 सेकेंड्स तक इन्फॉर्मेशन जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है। अगर 30 सेकेंड्स के बाद हम इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करते हैं तो वो फिर, ये तो खैर मैंने शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात कर दी, सेंसरी जो, अगर हम अभी सेंसरी मेमोरी की बात करें तो सेंसरी मेमोरी जो है वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन के लिए रहती है। शॉर्ट स्पैन मतलब फ्यू सेकेंड्स, मिली सेकेंड से लेके कुछ सेकेंड्स तक रहती है। अगर वो प्रोसेस नहीं होगी तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी। फिर जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करेंगे तो उसमें हम बोलेंगे कि प्लस माइनस 7 आइटम्स रहता है और वो 30 आइटम्स के रहता है। ब्रेन को वो किया है ना, मतलब उससे भी हम लोग कहते हैं कि आप ऑटोमेटिकली परसीव कर लेते
जी, बिल्कुल,
क्योंकि प्रैक्टिस है, वो रीडिंग एबिलिटी,
हम पूरे वर्ड को देखते भी नहीं है, जस्ट ग्लांस एट इट,
पर आते जंबल्ड वर्ड आते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको एज इट इज पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन को प्रैक्टिस है, हम लोग को याद रहती हैं चीजें। अब देयर की स्पेलिंग्स आप TEHERE करोगे या THERE करोगे, लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि द मीनिंग इज देयर ओनली, इससे देयर ही बन सकता है। तो योर ब्रेन मेक्स अ सेंस ऑफ द थिंग्स, सेंसरी मेमोरी का पार्ट नहीं है ये प्रोसेसिंग का पार्ट है, आप किस तरह से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद हम लोग, जैसे हम सेंसरी मेमोरी की बात करें तो आगे ही चलते हम STM और LTM की बात करेंगे, विच इज योर शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब हम STM और LTM की बात करते हैं तो मैंने पहले ही शॉर्ट टर्म मेमोरी को या STM को डिफाइन कर दिया है, विच इज कि आपका जब सेंसरी रजिस्टर से सेंसरी इनपुट आएगा तो सेंसरी मेमोरी, जैसे फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए कोई चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, अगर आप फ्यू मिली सेकेंड से वो आपका अटेंशन को अट्रैक्ट कर ले तो वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी का डिफरेंस ये होता है कि उनका कैपेसिटी के बेसिस पे उनको हम डिफाइन करते हैं कि शॉर्ट टर्म कितनी कैपेसिटी है, लॉन्ग टर्म कितनी कैपेसिटी है, कितने ड्यूरेशन के लिए शॉर्ट टर्म में रहता है, कितने ड्यूरेशन के लिए लॉन्ग टर्म में रहता है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है, और जो भूलने का है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में किस तरह से फॉरगेटिंग होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में किस तरह से फॉरगेटिंग होती है, तो इसकी बेसिस पे हम इन दोनों टाइप्स की मेमोरीज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।
राइट,
अगर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें तो जैसे हमने कहा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ना उसे हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। वर्किंग मेमोरी कैसे कहते हैं, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं कि किसी को नंबर डायल करना है तो हम फटाफट अपने फ़ोन बुक में जाके उसका नंबर देखते हैं, एक ग्लैंस पे हमने उसका नंबर देखा और हम बोलते हैं अच्छा याद रखना ये वाला नंबर है, आई विल रिमेंबर फर्स्ट 4 डिजिट्स, यू रिमेंबर दी लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि रिमेंबर करके फटाफट नंबर डायल किया, बात करा एंड वी पुट द फ़ोन डाउन। लेकिन अगर मैं आपसे फोन पे बात करने के बाद पूछूं कि डू यू रिमेंबर द नंबर, तो आपको नंबर याद नहीं होगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी कि आपने जो है इन्फॉर्मेशन को 30 सेकेंड्स के लिए प्रोसेस किया और उसके बाद आपको वो भूल गया, क्योंकि उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, शायद आपको मोटिवेशन नहीं है उसको याद रखने का, या शायद दैट इज ऑफ नो यूज फॉर यू तो आपने उसको नहीं याद रखा, तो दैट इज योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम अपना वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्किंग मेमोरी ऑल्सो। फिर उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है जैसे अब फॉर एग्जांपल व्हेन वी रीड आवर लेसन्स तो हमको उसको प्रोड्यूस करना है द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन फॉर एग्जांपल, तो वो चीज़ें हमने क्या किया कि बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी में मेरी कोई बात आई, फिर मैंने उस इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया। अब हम इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं, या तो हम उसको बहुत एलैबोरेटली डिफाइन करते हैं, एलैबोरेटली कि हम एक एक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम अंडरस्टैंडिंग अलग से करते हैं, वी डू नॉट डू अ रोट लर्निंग, हम बार बार रिपीट करके किसी चीज़ को याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एलैबोरेट रिहर्सल किया है, उसका सिमेंटिक मीनिंग जाना है, उसका एक्चुअल मीनिंग जाना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ली है, लॉजिक समझा है और फिर हमने उसको समझ के अपने मेमोरी में रिटेन किया है। इस तरह से भी हम चीज़ों को मेमोरी में रिटेन करते हैं, और हम इस तरह से भी रिटेन करते हैं कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि कभी मुझे कोई भी गाना या कोई भी पोएम या कोई भी चीज़ याद नहीं हो रही है तो बार बार हम उसे रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, तो व्हेन यू रिपीट इट अगेन एंड अगेन देन ऑल्सो इट बिकम्स परमानेंट इन योर मेमोरी। तो मतलब कहने का ये है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को बार बार रिपीट करते हो या उसको एलैबोरेटली समझते हो, देन दैट इन्फॉर्मेशन गोज़ टू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन जो है वो परमानेंट हो जाती है, वो चांसेस आर रेयर दैट यू फॉरगेट इट, इवन इफ यू फॉरगेट इट तब भी थोड़ा सा अगर आप उस पे वो थोड़ा सा वर्क ऑन करोगे तो वो चीज आपको याद आ जाती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि 4 6 कितने होते हैं, तो अगर एकदम से आप नहीं बता पाओगे तो भी 2 मिनट के गैप में बता दोगे या 1 मिनट के गैप में बता दोगे, तो बिकॉज दैट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो ये डिफरेंस है कैपेसिटी में. ये रहता है कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी है, मैंने पहले भी कहा वो 7 आइटम्स प्लस माइनस 2 हम लेते हैं कि 5 7 9 आइटम्स जो हैं वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है इतनी आइटम्स को अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकता है. वेयर एज लॉन्ग टर्म मेमोरी अनलिमिटेड चीज़ों को स्टोर करके रख सकती है, क्योंकि मुझे ये भी याद है कि 4 × 6 कितना होता है, मुझे ये भी याद है कि घर जाके क्या करना है, मुझे ये भी याद है कि अभी जाके क्या करना है, मुझे ये भी पता है कि इस टाइम क्या करना है. एंड देर आर सो मेनी अनलिमिटेड थिंग्स दैट आर देयर इन माई माइंड. ये तो होगी कैपेसिटी की बात दोनों के डिफरेंस के लिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए. दूसरा है ड्यूरेशन. ड्यूरेशन जैसे मैंने आपको कहा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो है लिमिटेड ड्यूरेशन होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन एट द मोस्ट 30 सेकेंड्स के लिए आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है. अगर आप उसको प्रोसेस नहीं करते हो तो वो गोज ऑफ फ्रॉम योर शॉर्ट टर्म मेमोरी. लेकिन जो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है उसका जो ड्यूरेशन हो सकता है दैट में लास्ट फ्रॉम डेज टू ईयर्स और टू लाइफ टाइम. क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई इवेंट है वो मुझे 3 दिन तक याद रहता है, मुझे 4 दिन तक याद रहता है. कई बार हमको अपनी इंसल्ट जो है ना वो 3 दिन तक याद रहती है, बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करती है. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो हमें वो चीज़ भूल जाती है. तो दैट इज़ दी जो भी चीज़ ज़्यादा टाइम तक हमें याद रहती है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में. ये है ड्यूरेशन. दूसरा है किस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रोसेस की जाती है और किस टाइप की इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रोसेस की जाती है. तो जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करते हैं तो बेसिकली जो विजुअल इमेजेस हैं या साउंड्स हैं या वर्ड्स हैं सेंटेंसेस हैं ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रोसेस होते हैं, और जो मीनिंगफुल वर्बल मटेरियल्स हैं या जो लाइफ इवेंट्स हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो हम प्रोसेस करते हैं. उसी की तरह कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्यों होते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इन्फॉर्मेशन विद न्यू इन्फॉर्मेशन. जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपने फ़ोन बुक से कोई नंबर देखा, आपने उसको डायल किया, जब तक डायल कर रहे थे तब तक आपको याद था, बात कर रहा तो आपने वो इन्फॉर्मेशन डिलीट हो गई. वो इन्फॉर्मेशन क्यों डिलीट हो गई, क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन ने उसको डिस्प्लेस कर दिया. नई इन्फॉर्मेशन क्या आई, जिस इंसान से आप बात कर रहे थे वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और उसका नंबर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ. तो दैट इज दी ओल्ड इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्लेस्ड बाय दी न्यू इन्फॉर्मेशन. तो एक तो ये इसका कॉज रहता है. दूसरा जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कई बार हम लोग बात करते हैं कि क्यों हमको चीज़ें याद नहीं रहती, कई बार हम कहते हैं कि वाई आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन या दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, वो इसलिए होता है या तो इंटरफेरेंस बहुत हो रही है. जैसे बहुत सिमिलर सब्जेक्ट्स हैं, हमने लर्निंग में पिछले जो लेसन था हमने उसमें बात करी थी कि कई बार होते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन. आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा और उसी के साथ आपने सिमिलर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा जिनके दोनों के कॉन्सेप्ट सेम हैं, तो कई बार वो आपको हेल्प भी कर सकते हैं, कई बार वो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है. तो ये सब चीज़ें होती है कि आपको इंटरफेरेंस हो रही है तो इस वजह से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो चीज़ें हैं वो भूल जाती हैं, या फिर आपने मटेरियल को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया. जैसे ऑर्गेनाइजेशन का हम बात कहते हैं कि कोई भी चीज़ आपको याद करना चाहते हो तो इसको एक सेट सीरियल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज होके तरीके से चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करो. आप हैपजर्डली कहीं से भी पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको चीज़ें याद नहीं होंगी. तो इस वजह से जो है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में फॉरगेटिंग के चांसेस रहते हैं. आई विटनेस टेस्टिमनी या आई विटनेस मेमोरी की जब हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग बोलें तो ह्यूमन मेमोरी जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है और वो वही चीज़ें क्रिएट कर, वो क्या चीज़ें क्रिएट करता है दैट इज़ अ मेजर चैलेंज. आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग वही चीज़ें देखते हैं और वही चीज़ें याद करते हैं जो हमारे इमोशंस से रिलेटेड होती हैं. कई बार आई विटनेस टेस्टिमनी को टेस्ट किया गया तो यही देखा गया कि लोग किस इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड में थे तो उसके अकॉर्डिंगली ही उन्होंने चीज़ों को परसीव किया और उन्होंने चीज़ों को याद रखा. तो यही वाली चीज़ रहती है आई विटनेस मेमोरी, यही होती है. और ये एक चीज़ है कि इट इज़ ओनली व्हेन वी लुक एट द ओवरऑल मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मेमोरी दैट वी कैन रियली जज. मतलब हम लोग ऐसे जज नहीं कर सकते हैं, आई विटनेस के बेसिस पे हम किसी आई विटनेस के बेसिस पे किसी की मेमोरी के बेसिस पे हम चीज़ों को एज अ प्रूफ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि किसी का क्या स्टेट ऑफ माइंड किस टाइम पे था वो वही चीज़ याद रखेगा. कई बार आपने देखा होगा कोर्ट्स में आई विटनेस टेस्टिमनी आता है, लेकिन हम लोग फिर भी यही कहते हैं कि किसी इंडिविजुअल पे टोटली इस चीज़ पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक हम पूरी सिचुएशन को समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक हम नहीं कह सकते कि वो मेमोरी सही में वही इवेंट को डिस्क्राइब कर रही है या इंडिविजुअल का अपना इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को डिस्क्राइब कर रही है. तो यही है मतलब इसी को मतलब आई विटनेस मेमोरी इज दिस व्हाट यू रिमेंबर एज पर योर
स्टेट ऑफ माइंड.
हाँ, एट दैट टाइम वही वाली चीज़ है. देखिए, जब हम ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी की बात करते हैं, तो मैं अभी जब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिलीट सम इवेंट्स फ्रॉम आर माइंड ऑल्सो. लेकिन क्योंकि हम कई बार मैंने आपको कहा कि देर आर सर्टेन पीपल इन दी वर्ल्ड जिनको अपने लाइफ का एक एक इवेंट विद डेट एंड टाइम याद है, एक एक पिक्चर याद है, तो इट बिकम्स रियली रियली डिफ़िकल्ट फॉर देम कि वो अपना जीवन कैसे जीते होंगे, क्योंकि सब कुछ उनके दिमाग में इकट्ठा है. तो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज एक्चुअली होती हैं कि जो हमारे लाइफ में जो भी हमारे साथ इवेंट्स हुए होते हैं उनकी मेमोरीज को ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, उसने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा, तो दैट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, दैट व्हाट यू रिमेंबर अबाउट योरसेल्फ. जो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज होती हैं इसको हम तीन तरह के लाइफ टाइम पीरियड्स में जो हैं वो डिवाइड करते हैं. एक तो हम लोग कहते हैं कि मतलब तीन पीरियड्स में थ्री डिफरेंट लेवल्स पे डिफाइन करते हैं. कहते हैं लाइफ टाइम इवेंट्स. लाइफ टाइम इवेंट्स वो होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो हमेशा हमें याद रहते हैं. जैसे कि अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ तो आपका पर्सनल लाइफ जो है वो रीजनेबली आपके साथ रही है. आपके माँ बाप कौन है, आपकी सिस्टर कौन है, आपके आपका हस्बैंड कौन है, इस तरह से इन लोगों से जुड़ी बातें या ये लोग आर पार्ट ऑफ योर लाइफ, लाइफ टाइम मेमोरी है आपकी, तो ये कंसिस्टेंटली आपके साथ रहते हैं. तो दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी. दूसरा होता है जनरल इवेंट्स. जनरल इवेंट्स होते हैं कि हम लोग कभी मसूरी घूमने गए थे, या हम लोग कभी किसी ट्रिप पे कहीं और गए थे, या हम किसी कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो वो चीज़ों की मेमोरीज जो आप याद रखते हैं कभी कि मैं जब उस स्टैंडर्ड में थी तो हम लोग पिकनिक पे कहाँ गए थे, तो दोज आर जनरल इवेंट्स एंड मेमोरीज ऑफ दोज जनरल इवेंट्स. तो दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ द ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी. और एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं इवेंट स्पेसिफिक नॉलेज. इवेंट स्पेसिफिक नॉलेज की उस समय पे स्पेसिफिकली किसी एक एपिसोड को आप अपने लाइफ से जो है हमेशा याद रखते हैं. वो हम सबके साथ होता है, जो हमें लगता है कि वो वाला इंस्टेंस अपने लाइफ से मैं कभी नहीं भूल सकता या मैं कभी नहीं भूल सकती, तो वो होते हैं इवेंट स्पेसिफिक नॉलेज. तो दिस इज़ वॉट ऑटोबायोग्राफिकल मेमरीज की आपका मेमरी अबाउट योर लाइफ आपको किस तरह से याद रहती है, इसको हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं. अब जब हम ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज की बात करते हैं, एक तो ये हो गया. दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने अभी तो मेमोरीज़ की बात कर ली कि सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, आई विटनेस मेमोरी है या ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है, बट हाउ डू वी मेजर द रिटेंशन. हम कैसे रिटेंशन को मेजर करेंगे कि किसी को कोई चीज़ याद रही या नहीं रही. तो हम लोग जब भी बात करते हैं फॉर मेजरिंग दी रिटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल, तो हम उसके दो तरह से करते हैं, एक्सप्लिसिट मेजर्स से और इम्प्लिसिट मेजर्स से. नाम है ये. तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेजर में क्या बात आती है कि जब हम एक्सप्लिसिट मेजर से किसी की मेमोरी को परखने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कि रिकॉल और रिकग्निशन टास्क देते हैं. रिकॉल टास्क कि फॉर एग्जांपल आपके जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो आई एम द एग्जामिनर इज एक्चुअली टेस्टिंग इट थ्रू द एक्सप्लिसिट मेजर. हम लोग टेस्ट करते हैं कि आपको कितना, हाउ मच यू आर एबल टू रिमेंबर, आप कितना रिकॉल कर रहे हो किसी एस्पेक्ट को. आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आप रिकॉल ही करोगे, तो दैट इज़ अ रिकॉल टास्क. आप रिकॉल से हम मेजर करते हैं किसी की मेमोरी. दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं रिकग्निशन टास्क. रिकग्निशन टास्क में होता है जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ कि आपको मैंने फोर ऑप्शन दे दिया, तो फोर ऑप्शन में से आप एक करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करोगे, तो दैट इज़ अ रिकग्निशन टास्क कि उसके बेसिस पे मैं आपकी मेमोरी को मेजर करती हूँ कि वेदर यू आर एबल टू रिमेंबर वॉट यू हैव लर्न और नॉट. ठीक है, तो दैट इज़ अ रिकग्निशन टास्क. ये आता है एक्सप्लिसिट मेजर्स में, जो सामने सामने आपको दे दिया एज इट इज़ और आपने उसका एज इट इज़ आंसर दिया. एक होता है इम्प्लिसिट मेजर्स. इम्प्लिसिट मेजर्स में क्या होता है कि कुछ इनकम्प्लीट चीज़ें हम लोग आपको देते हैं, जो इनकम्प्लीट चीज़ों के बेसिस पे आपका मेमोरी को मेजर करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल हम कई बार देखते हैं वर्ड कम्प्लीशन, ठीक है, तो एक वर्ड दिया होता है जैसे फोर लेटर्ड वर्ड है लेकिन उसमें से एक अल्फ़ाबेट मिसिंग होता है, तो वो अल्फ़ाबेट मिसिंग होगा तो यू यू ऑटोमेटिकली यू नो अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड इज़. कई बार आपने देखा होगा होर्डिंग्स लगे होते हैं, तो होर्डिंग्स पे होर्डिंग में जैसे एफ ओ डी लिखा है लेकिन एफ ओ डी ही रह गया और एक ओ जो है वो गिर गया है हवा से, लेकिन योर ब्रेन इज एबल टू रिमेंबर दैट द वर्ड इज फूड. ठीक है, तो ये क्या है, दैट इज़ अ इम्प्लिसिट मेजर. आपको वर्ड कम्प्लीशन से हम लोग चीज़ों को आपका मेजर करने की कोशिश करते हैं, हाउ मच यू आर एबल टू रिमेंबर. देन इज प्राइमिंग टास्क. दिस वॉज, आई एम सॉरी, दिस वॉज एक्चुअली अ प्राइमिंग टास्क. और वर्ड कम्प्लीशन में क्या होता है कि लर्नर इज प्रेजेंटेड विद फ्रेगमेंट ऑफ वर्ड्स एफ एस एच, तो वॉट एफ डैश एस एच फिश. ठीक है, प्राइमिंग टास्क में क्या होता है कि अर्लियर बैकग्राउंड एक्टिविटीज दी जाती है. हाँ, implicit measure is the same कि incomplete word is there and you complete it through your memory. ठीक है, वह है word completion. priming task क्या होता है कि अभी जब हम लोग for example एक हम आपको ना priming activities देते हैं, तो what is a priming activity? priming activity में क्या होता है कि for example reading a story may help to complete fragments of words in a particular manner. जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपको एक story सुना दी जाती है, अब वो स्टोरी इज़ अ डिफरेंट थिंग. फिर उसके बाद आपको कुछ टास्क दिया जाता है टू कम्प्लीट. जब आप उस टास्क को कम्प्लीट करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं जो आपने उस टाइम स्टोरी में सुनी हुई होती हैं या देखी हुई होती है, तो यू आर एबल टू रिकोगनाइज, वहाँ से मेमोराइज करके आप उन चीज़ों को जो एक्चुअल परफॉर्मेंसेस में फिट करते हो. तो दैट इज़ अ प्राइमिंग टास्क कि पहले आपको जो दिया गया है, प्राइम किया गया है, हाउ मच दैट प्राइम मटीरियल इज एबल टू मेक यू रिमेंबर दी और टू कम्प्लीट द सबसिक्वेंट टास्क. तो इस तरह से हम किसी भी इंडिविजुअल की मेमोरीज को मेजर करने की कोशिश करते हैं. हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, एक तो होता है डीके ऑफ मेमोरी ट्रेसेस. जैसे हम लोगों ने बात किया कि नई इन्फॉर्मेशन आती है और दूसरी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्लेस कर देती है, या विद टाइम क्या होता है वो इन्फॉर्मेशन फेड कर जाती है हमारे माइंड से. जैसे डिम लाइट डिम 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 होती जाती है, वैसे ही मेमोरी फेड होती जाती है, तो डीके हो जाता है. दूसरा इंटरफेरेंस हो जाता है, जो हमने बात किया कि एक जैसी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो इंटरफेरेंस हो जाती है, ना एक चीज़ याद कर पाते हैं ना दूसरी चीज़ याद कर पाते हैं. तीसरा है मोटिवेशन, जो मैंने आपको बोला था मैं कोई सब्जेक्ट तभी पढ़ने की कोशिश करूंगी अगर मैं मोटिवेटेड हूँ.
राइट,
इफ आई एम नॉट मोटिवेटेड टू लर्न समथिंग आई विल नेवर बी एबल टू रिमेंबर इट. फिर चौथा आता है रिट्रीवल फेलियर. रिट्रीवल फेलियर किसी भी वजह से हो सकता है, वो हो सकता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिट्रीवल क्यूज, आपकी मतलब आप किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहीं पे एक जगह पे किसी चीज को याद किया था लेकिन आपको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मैं उस चीज को रिमेंबर करने को बोलूं तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि दो जगहों का माहौल एक तरह से मैं कहूंगी अलग है. तो दैट इज अ रिट्रीवल फेलियर, यू आर नॉट एबल टू रिट्रीव इट इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट.
राइट,
तो ये सब चीजें आती हैं. और हमारा मेमोरी जो है वो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, वी आर कंस्ट्रक्टिंग आवर मेमोरीज, वी आर ऑन आवर ओन आर कंस्ट्रक्टिव आवर मेमोरीज. लास्ट में जाने से पहले मैं सिर्फ यही कहूँगी कि इफ़ यू वांट टू एनहांस योर मेमोरीज, तो आप एक तो जब भी कोई मटेरियल को लर्न करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज कीजिए. ऑर्गेनाइज करके अगर कोई भी चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका रिटेंशन जो है वो हमेशा अच्छा होगा. हैपजर्डली कोई चीज़ यहाँ से उठा ली, कोई चीज़ यहाँ से उठा ली और बिना सीक्वेंस के आप पढ़ोगे तो एक तो वो प्रॉब्लम होगी. दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन. जब तक आप किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से ध्यान लगा के मन लगा के नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई चीज़ को मेमोराइज करना जो है वो डिफ़िकल्ट होगा. तो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए. तीसरा है मेथड ऑफ लोकाई. मेथड ऑफ लोकाई का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए हम उसके वो कहाँ पे पड़ी है चीज़, किस प्लेस पे पड़ी है चीज़, उस तरह से हम उस चीज़ को रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं. फिर आता है रिकोडिंग. रिकोडिंग का मतलब होता है हम कई बार ना कोड्स बना देते हैं. जैसे हमने रेनबो के कलर्स याद रखने हैं तो हमने विबग्योर एक कोड बना के रखा है. तो विबग्योर जब हमने वॉयलेट इंडिगो ब्लू ऐसे करके जब हमने कोड बना दिया तो हम चीज़ों को रिमेंबर कर पाते हैं. तो आप किसी भी चीज़ का अपने हिसाब से कोड्स जो हैं अपने कन्वीनियंस से बना सकते हैं, सिर्फ अपने आप को कुछ चीज़ों को रिमेंबर करने के लिए.